आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नया दिन, नई शाम और एक नया शो। SBS हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नबील। शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राज के वुरुंजरी और वुईवुरुंग लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो आज के शो में कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज के शो की जो पहली रिपोर्ट है, ग्लोबल एनर्जी में रुकावटों के बीच ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इससे जुड़ी जानकारी लाएंगे आपके लिए। उसके बाद होगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें। फिर बात एक नई नेशनल रिपोर्ट की, जिसमें पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में 340,000 से ज्यादा प्रवासी और रेफ्यूजी महिलाएं अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल से नीचे स्तर की नौकरियों में काम कर रही हैं। सिर्फ 41% महिलाएं ही अपनी योग्यता के मुताबिक जॉब्स में हैं। इस रिपोर्ट में एक माइग्रेंट महिला के अनुभव भी शामिल है। और अंत में सिडनी के एक चाय बार की कहानी, जो सिर्फ एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक नया जरिया बन रहा है। इसकी शुरुआत एक फॉर्मर सोल्जर ने की है। मसालों वाली खास चाय और अलग अलग जगहों से आए लोगों की कहानियों के साथ ये जगह कैसे बन गई है खास, इसको जानेंगे। चलिए, ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं आज का न्यूज फ्लैश। बुधवार 6 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन। ट्रेजरर जिम चामर्स ने कहा है कि वो जानते हैं कि रिजर्व बैंक के ब्याज दरों पर ताजा फैसले से ऑस्ट्रेलियंस पर कॉस्ट ऑफ लिविंग का दबाव और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मंगलवार यानी 12 मई को पेश होने वाला फेडरल बजट इसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें खर्च पर नियंत्रण और बड़ी बचत पर जोर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इन्फ्लेशन अब भी चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। बैंक का कहना है कि वैश्विक कारणों से कीमतों पर दबाव बना हुआ है और इसी के चलते सख्त नीतियां जरूरी हैं। जिम चामर्स ने इस बयान को भी खारिज किया है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे सरकारी खर्च जिम्मेदार हैं। सिडनी के एक नेशनल पार्क में कई एजेंसीज मिलकर एक तलाशी अभियान चला रही हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पानी में डूबी कार के अंदर फंसे होने की आशंका है। पुलिस को शक है कि आज सुबह करीब 1:15 पर सिडनी के दक्षिणी हिस्से में ऑडली वेयर में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। इसके बाद कार फौरन ही पानी में डूब गई। 20 वर्षीय ड्राइवर किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद पैसेंजर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर क्राइम सीन स्थापित कर दिया है और मामले की जाँच जारी है। फेडरल सरकार अगले हफ्ते आने वाले बजट के तहत ऑनलाइन होने वाली एक्सट्रीमिस्ट गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक नया सेंटर स्थापित करेगी। ये सेंटर स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स और एनालिस्ट को एक साथ लाएगा, ताकि संभावित खतरों की पहचान की जा सके और उन्हें रोका जा सके। अधिकारियों ने ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन में बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। $74 मिलियन का ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी ASIO और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस द्वारा मिलकर चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर नजर रखना है। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्ग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही चाइल्ड प्रोटेक्शन और साइबर क्राइम जैसे मामलों के लिए समर्पित केंद्र मौजूद हैं, और ये नई पहल तेजी से बदलते ऑनलाइन खतरों का सामना करने की दिशा में अगला कदम है। دنیا بھر میں جینڈر ایکوالٹی پروگرامز کو فورن ایڈ بجٹس میں کٹوتی کے کارن بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لوئی انسٹیٹیوٹ کے نئے ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ گلوبل ایڈ کا کیول 2.3% حصہ مکھیہ روپ سے مہیلاؤں اور لڑکیوں کے لیے ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور سیفٹی کی پہنچ سدھارنے پر خرچ ہوتا ہے۔ اس میں سے بھی آدھے سے ادھک فنڈنگ کے ختم ہونے کی آشنکا ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، جرمنی، فرانس اور کینیڈا جیسے دیش اپنی ایڈ کمٹمنٹس میں کٹوتی کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے آتھر گری سٹین ہوپ نے کہا ہے کہ جینڈر ایکوالٹی کو صحیح طریقے سے فنڈ نہ کرنا صرف ایک وکاس سمبندی سمسیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ودیش نیتی سے جڑا جوخم بھی ہے۔ لو انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا، جس نے اپنی ایڈ کمٹمنٹس میں کٹوتی نہیں کی ہے، اس پریاس میں نیتریتو کرنے کی بھومیکا نبھانے کے لیے اچھی استھتی میں ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کو انتم روپ دینے کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز میں پھنسے جہازوں کو سرکشت نکالنے کے لیے چلائے جا رہے امریکی ابھیان پروجیکٹ فریڈم کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ پروجیکٹ فریڈم کو روک دیا گیا ہے، لیکن ایران کے پورٹس پر لگایا گیا یو ایس نیول بلاکیڈ جاری رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ قدم پاکستان اور کچھ انیہ دیشوں کے انوروھ پر اٹھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ مدھیہ پورو میں سیز فائر ابھی بھی جاری ہے اور ایران کے خلاف کیا گیا پہلا بڑا یو ایس ملٹری آپریشن سماپت ہو چکا ہے۔ اور اب خبر بھارت سے۔ بھارت سرکار نے منگلوار کو گجرات میں 2 سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ یونٹس کو منظوری دی ہے، جن میں لگ بھگ 4,000 کروڑ روپے کا نویش ہوگا۔ ان پریوجنوں سے قریب 2,230 اسکل جابز بننے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت سویکرت پروجیکٹس کی سنکھیا بڑھ کر 12 ہو گئی ہے، جن میں کل نویش لگ بھگ 1.64 لاکھ کروڑ روپے پہنچ گیا ہے۔ ان یونٹس میں بننے والے پروڈکٹس کا اپیوگ ٹی وی، اسمارٹ فون، ٹیبلٹس، ان کار سسٹمز، اسمارٹ واچز اور ایکسٹینڈیڈ ریالٹی یعنی ایکس آر گلاسز جیسے ڈیوائسز میں کیا جائے گا۔ کئی سیمی کنڈکٹر پلانٹس کے 2026 اور 2027 تک تیار ہونے کی امید ہے۔ یہ تھا آج کا نیوز فلیش نبیل حسن کے ساتھ۔ انی خبروں اور جانکاری کے لیے بنے رہیے ایس بی ایس ہندی پر۔ ہماری ویب سائٹ ہے sbs.com.au/hindi۔ آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ہندی، اور اب نیوز فلیش کے بعد شو کی پہلی رپورٹ۔ اور گلوبل انرجی میں رکاوٹوں اور لڑکڑاتی ہوئی وشو ویوستھا کے بیچ آسٹریلیا اور جاپان نے آرتھک اور سرکشا سہیوگ کو مضبوط کرنے کے لیے کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے ہیں۔ آئیے اسی پر جانتے ہیں تھوڑا اور۔ پوری خبر اس رپورٹ میں لا رہی ہیں سواتی شرما۔
جاپان کی تتھا کتھت آئرن لیڈی اور پہلی مہینہ پردھان منتری سانائے تاکائیچی ایک نیتا کے روپ میں پہلی بار آسٹریلیا کے دورے پر آئی ہیں۔ یہ دورہ اس ایتہاسک نارا سندھی کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے، جس پر میلکم فریزر اور پردھان منتری میکی تاکیو نے ہستاکشر کیے تھے اور جس سے دوپکشی دوستی اور سہیوگ کی نیو پڑی تھی۔ ویشوک ارجا سنکٹ اور انتراشٹریہ نیم آدھارت ویوستھا میں بڑھتی استھرتا کے بیچ پردھان منتری اینتھنی البنیزی کا کہنا ہے کہ یہ دورہ ان سمبندھوں کو اور مضبوط کرے گا۔
Our friendship has never been closer, and in these uncertain times, friendships matter more than ever. The world has changed immensely since 1976, but the strength of Australia and Japan's friendship and the spirit of generosity and respect that our people share is stronger than it has ever been.
پورو ہیوی میٹل ڈرمر سے وشو نیتا بنی اس نیتا نے پردھان منتری البنیزی کے لیے اپہار بھی لائے، جاپانی میٹل اور راک بینڈز کے 2 وینائل ریکارڈ۔ اس کے بدلے میں جاپان کی تاکائیچی کو اے سی ڈی سی بینڈ کے سنستھاپک میلکم ینگ کی تصویر کے ساتھ ایک سائن کیا ہوا ڈرم سکن بھینٹ کیا گیا۔
We will continue our discussions including on issues like heavy metal music and other important matters of state.
نئے سمجھوتوں کے تحت دونوں نیتاؤں نے رکشا، سرکشا، مہتوپورن کھنج، سائبر سرکشا اور ویاپار میں سہیوگ کو اور گہرا کرنے کی گھوشنا کی۔ آرتھک سرکشا پر ایک سمجھوتا ارجا اتپادوں، مہتوپورن کھنجوں اور کھادیہ جیسے سامانوں کی آپورتی شرنکھلا کو مضبوط کرنے پر کیندرت ہوگا۔ دوپکشیہ سہیوگ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سمجھوتے کے تحت دونوں دیشوں کو آرتھک سرکشا اپایوں اور جوکھم کم کرنے کے قدموں پر ایک دوسرے سے پرامرش کرنا ہوگا۔
Firstly, the Joint Declaration on Economic Security Cooperation that we signed today will make us more resilient to economic shocks and uncertainty, enable us to further build trusted supply chains, accelerate development of critical technologies such as AI, quantum and biotechnology, and support regional economic resilience.
इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा पर एक समझौते में दोनों नेताओं ने ईंधन और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। जापान ऑस्ट्रेलिया को रिफाइंड पेट्रोलियम और डीजल सप्लाई करने का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। ऑस्ट्रेलिया जापान रिसर्च सेंटर के निदेशक शिरो आर्मस्ट्रांग ने एसपीएस को बताया कि जापान ऊर्जा उत्पादों के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है।
It's got about 16.5% energy self-sufficiency, and Australia is by far the largest supplier of energy. One third of Japan's energy needs comes from Australian gas and coal. So we play an important role in underwriting Japan's energy security. And that means we have to avoid creating uncertainty and remain a stable and secure supplier.
यह समझौता ऐसे समय में आया है जब अल्बनीजी सरकार पर गैस निर्यात पर 25% टैक्स लागू करने का दबाव बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार यह टैक्स हर साल ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में 17 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। हालांकि इस टैक्स के विरोधियों का कहना है कि इससे ऑस्ट्रेलिया की एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थिति कमजोर हो सकती है। शिरो आर्मस्ट्रांग का कहना है कि घरेलू नीति ऑस्ट्रेलियाई लोगों के हित में होनी चाहिए, लेकिन साथ ही क्षेत्र के प्रमुख साझेदारों को भी भरोसा मिलना चाहिए।
That doesn't mean we can't get domestic energy policy right. That's been uncertain for many years in Australia. But as we change our policies and get domestic energy policy right, we have to do so in a way that does not discriminate against our customers in Northeast Asia and provide certainty for them going forward.
इस दौरे के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई। मौजूदा समझौतों को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त बयान में एक दूसरे के क्षेत्रों में नए उपकरणों, उन्नत हथियारों और उभरती तकनीकों के परीक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के जनरल क्लास युद्धपोतों को जापानी मोगामी क्लास फ्रिगेट डिजाइन में अपग्रेड करने के लिए बहु अरब डॉलर का अनुबंध किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों ही अमेरिका के ऐतिहासिक सहयोगी हैं, लेकिन वे व्यापार और भौगोलिक रूप से चीन से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे अमेरिका के गठबंधनों को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है और चीन का प्रभाव फैल रहा है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का कहना है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
The message to China, but also to the United States and the whole region, is that Australia and Japan stand for the rules-based system and an open global economy. And so the declarations on economic security, for example, are about bedding down that interest and cooperating more fully between the two countries at the highest level to help ensure the assumptions that we've worked on that are being overturned about the rules-based system and protection of openness maintain and we preserve this system we have while we work to create new rules, new standards that serve our interests going forward.
महत्वपूर्ण खनिजों पर भी एक समझौता हुआ जिसमें जापान चीन से अलग अपनी धातु आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। निवेश के लिए 6 प्रमुख परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें इस संबंध का मुख्य स्तंभ माना जा रहा है और जो आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को दूर करने पर केंद्रित है। स्काई न्यूज से बातचीत में व्यापार मंत्री डॉन फेरल ने कहा कि वे आने वाले हफ्तों में जापान का दौरा करेंगे ताकि इन समझौतों को आगे बढ़ाया जा सके।
I'm in fact 2 weeks' time. I'll be up there in Japan, continuing our discussions with Japan. You might recall after the Prime Minister's visit to Singapore, we met with our counterparts to put some flesh on the bone of these agreements. It's important that the document itself reflects what's agreed. Certainly, our discussions with Singapore has continued to result in us getting our fuel supplies. But also in the area of critical minerals. We really want greater investment from our allies in the region. There are wonderful opportunities in our critical mineral industry and we want Japan to be engaged in that process.
एक सख्त रूढ़िवादी नेता के रूप में सानाए ताकाइची की राजनीतिक पृष्ठभूमि एंथनी अल्बनीजी से काफी अलग है, लेकिन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण रिश्ते में ये मतभेद पीछे रह जाते हैं।
That's almost irrelevant for the bilateral relationship. They share a deep interest in the bilateral relationship, Prime Minister Albanese and Prime Minister Takaichi, and the core interests of the stable regional order. So I heard Prime Minister Takaichi refer to Prime Minister Albanese as Anthony, and I think they're building a close rapport.
SBS News से सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने. धन्यवाद.
SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मेरा नाम है नबील. और अगली रिपोर्ट से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना. 8 मई यानी कि परसों हम एक बहुत स्पेशल शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और ये है खास मदर्स डे से जुड़ा. अक्सर घर में माँ सबका ख्याल रखती है लेकिन रोज़ की भागदौड़ में वो अपना ख्याल रखना ही भूल जाती हैं. इस मदर्स डे हम बात करेंगे माओं के पोषण और सेहत की ये खास लाइव टॉक बैक के साथ. यानी स्टूडियो में उस दिन हमारे पास एक बहुत खास मेहमान होंगी. एक डाइटिशियन होंगी पूर्वा गुलियानी जो आपके सवालों के जवाब देंगी वो भी लाइव शो के दौरान. तो आपको ये नंबर याद रखना है 04397997667 और शो जो कि हमारा 5 से 6 बजे के बीच होता है इसके बीच आप जरूर कॉल करिएगा परसों और अपने सवाल तैयार रखिएगा. आप चाहें तो अपने सवाल SMS द्वारा भी हमें भेज सकते हैं 04397997667 नंबर पर. लेकिन आपके SMS के साथ साथ हम चाहेंगे कि आप 8 मई शाम 5 से 6 बजे के बीच SBS हिंदी का जरूर शो सुनिए और कॉल भी जरूर करिएगा. तो इस स्पेशल प्रोग्राम में माओं की डाइट, रिकवरी, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी. तो ये जरूरी सूचना थी मदर्स डे के एक खास टॉकबैक शो से जुड़ी. और अब आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं हमारी अगली रिपोर्ट जो है इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आए आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली है. सत्ताधारी TMC को हार का यहां सामना करना पड़ा है. 4 मई को आए इस परिणाम के बाद राज्य में कई जगहों पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आ रही हैं. TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई स्थानों पर झड़प भी हुई है. कई जगह TMC के कार्यालय पर हमला हुआ है. संवेदनशील जगहों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है. इस राजनीतिक हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हुई है. चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को निर्देश जारी कर शांति व्यवस्था तुरंत बहाल करने को कहा है. दंगाइयों के विरुद्ध तुरंत और कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है. इधर TMC ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर सवाल उठाए हैं. भाजपा पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया है. देश के अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने TMC के सुर में सुर मिलाया है. इसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD जैसे दल ने भाजपा पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी कह रही हैं कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी. चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर भड़कते हुए ममता बनर्जी कहती हैं,
आई मस्ट से दैट व्हेन जुडिशियरी इज नॉट देयर, व्हेन इलेक्शन कमीशन इज बायस, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स ओनली 1-party rule, देन हाउ द पीपल विल गेट जस्टिस. इट इज ए सेम For everyone, the wrong message is going to the world that you cannot fight democratically. All you are capturing forcefully and narrative and negative. You have enough money, betting management. So we will bounce back. We will fight it out.
Pardarshita par sawal uthate hue TMC sansad Kalyan Banerjee kehte hain,
why the press would be not there, why the CCTV would not work, why the CCTV will not be shown by the outsiders, where is the transparency of the counting, there is no transparency of the counting.
अगले मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को देखा जा रहा है. उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा,
हारने का बाद बहुत बोलता है, हारने का पहले तो नहीं बोला, SIR के खिलाफ बोला, फाइनल वोटर लिस्ट निकला, वही वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव लड़ा, कैंपेन किया, कैंपेन के दौरान बोल रहा हम लोग आ रहा है, एग्जिट पोल आया, बोले ये एग्जिट पोल झूठा है। काउंटी सेंटर में गया, जब हारने लग गया तब बोला ये मीठा नहीं है।
ममता बनर्जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म होने का दावा करते हुए शुभेंदु अधिकारी कहते हैं,
ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा।
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने की धमकी के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया है। आयोग ने नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने विपक्ष की आलोचना और आरोपों को खारिज करते हुए प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है। बंगाल के बाद चर्चा दक्षिणी राज्य केरल और तमिलनाडु की। इन दोनों राज्यों में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है। केरल में एलडीएफ सरकार को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने यहां सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताए जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में फिल्मों से राजनीति में आकर कमाल करने वाले जोसेफ विजय मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ ले सकते हैं। उनकी पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, हालांकि उसे बहुमत से 10 सीटें कम मिली हैं। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके के 108 विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक चुने गए हैं जो टीवीके को समर्थन दे सकते हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल इस बारे में कहते हैं,
INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitution in letter and spirit. The INC is determined not to of the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner. Thiru Vijay has spoken about the drawing.
पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर सांसदों के उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पार्टी का साथ छोड़ने वाले सांसदों ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति के सामने इन सांसदों ने अपनी बात रखी है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद राघव चड्डा ने कहा,
आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद से।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। उन्होंने राघव चड्ढा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होने का मतलब कार्रवाई से बचने की गारंटी नहीं है।
कि जे उन्होंने कोई गलत काम किया होया तो बीजेपी च जाने का मतलब ये थोड़ी है कि कानून तो उपर हो गए हो। जे बीजेपी चले गए तो यह मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने कोई FIR ही नहीं हो सकती या उन्होंने कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उन्होंने कोई सुरक्षा कवच मिल गया।
उल्लेखनीय है कि अगले साल के शुरुआत में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बार भाजपा यहां चुनावी सफलता हासिल करने के लिए अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और अगर आप इंडिया रिपोर्ट जो अभी हमने आपके लिए प्ले करी या और भी कोई भी ऑडियो कार्यक्रम सुनना चाहते हैं एक बार फिर से तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sbs.com.au/hindi और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करिएगा, जहाँ आपको ना सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट बल्कि कम्युनिटी स्टोरीज और ढेर सारा कॉन्टेंट और रील्स भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एड ब्रेक लेंगे, लेकिन एड ब्रेक से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि 8 तारीख 8 मई को हम एक बहुत ख़ास शो कर रहे हैं मदर्स डे से जुड़ा, और उसमें हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास तौर पर होंगी डाइटिशियन पूर्वा गिलानी, जो आपके सवालों का लाइव जवाब देंगी शो में। तो अगर आपका कोई भी सवाल है माओं की डाइट से रिलेटेड, रिकवरी, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े, तो आप अपने सवालों को तैयार रखिए और हमें फ़ोन ज़रूर करिएगा 5 से 6 बजे के बीच उस शो में। 0439-799-767 हमारा नंबर है, और आप हमें अपने सवाल पहले से भी भेज सकते हैं। तो आप अपने सवाल पहले से भी भेज सकते हैं। और अब लेते हैं एक एड ब्रेक, एड ब्रेक से वापस आकर कुछ और रिपोर्ट्स और कुछ गाने आपके लिए प्ले करेंगे। सुनते रहिए SBS हिंदी। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एड ब्रेक के बाद मेरा नाम है नबील, और अब बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ। ये रिपोर्ट है महिलाओं से जुड़ी हुई जो खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हैं, काम करती हैं। ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल वुमेन अलायंस ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया में 3,40,000 से अधिक प्रवासी और शरणार्थी महिलाएं अपनी योग्यता से कम स्तर की नौकरियों में काम कर रही हैं। सिर्फ 41% महिलाएं ही अपनी क्वालिफिकेशन के अनुरूप जॉब्स में हैं। इस रिपोर्ट में एक प्रवासी महिला के अनुभव और विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। पेश है नताशा कॉल की ये रिपोर्ट।
नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। उच्च शिक्षा और बेहतर योग्यताओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी महिलाओं के पास अक्सर वर्षों का पेशेवर अनुभव भी होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं और कौशल के अनुरूप अवसर मिल पा रहे हैं। तो हाल ही में एक जारी की गई नई रिपोर्ट बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में करीब 3,41,500 प्रवासी और शरणार्थी महिलाएं अपनी योग्यता से कम स्तर की नौकरियों में काम करने को मजबूर हैं। ये स्थिति तब है जब इनमें से हजारों के पास उन पेशों के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं जहां गंभीर कौशल की कमी है, जैसे शिक्षण, नर्सिंग और इंजीनियरिंग। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल वुमेन्स अलायंस ने सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल के साथ मिलकर जारी की है, जिसका शीर्षक है एक्टिवेट हर स्किल्स। रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के कार्यबल जरूरतों और उपलब्ध कौशल के बीच गहरे अंतर को उजागर करती है। प्रवासी महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 41% महिलाएं ही अपनी योग्यता के अनुरूप काम कर रही हैं। और यही नहीं, वे समान योग्यता वाली ऑस्ट्रेलिया में जन्मी महिलाओं की तुलना में 31% कम कमाती हैं। सर्वेक्षण में शामिल हर 3 में से 1 महिला ने कहा कि वे अपने कौशल से जुड़े पेशे में लौटना चाहती हैं।
मेरा नाम सरिता है और मैं मेलबर्न में रहती हूँ। एक उज्जैन से मध्य प्रदेश की नगरी, महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी में से छोड़कर मुंबई में आके और फिर यहाँ मेलबर्न में अपना एक नया जीवन 25 सालों से अपने करियर, विच इज जो इंडिया में मैंने म्यूजिक और क्लासिकल, लोक संगीत, सितार, इतने सारे गुरुओं को सीखकर और जब मैं यहाँ पहुंचती हूँ तो ये मेलबर्न क्या कहूँ कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत तकलीफ होती है कि आज 25 सालों के बाद भी पूरी लाइफ यहाँ पर आपके सहजीरे ने अगले 11 तारीख को 49 ईयर्स की होने जा रही हूँ। तो आप यूं कहिए कि मैंने 25 साल इंडिया में और 25 साल यहाँ निकाला है, उसके बाद भी एक अपनापन बहुत मुश्किल होता है और वही ढूंढ रही हूँ, अभी भी कोशिश कर रही हूँ। और चलो मेरी बात छोड़ो कि चलो मैं म्यूजिशियन हूँ, ठीक है, मैंने पूरा क्लासिकल सीखा है, मैंने पूरी पढ़ाई में बता रही हूँ ना, मैंने डबल मास्टर किया इंडिया आके, फिर यहाँ आके फिर मैंने मोनेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तब भी वही स्ट्रगल था कि वहां पर कोई टीचर ही नहीं है भाई हमें हमारे सिखाने के लिए। वुमेन आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हाई महिलाएं क्यों ऑलवेज, हम क्यों नहीं, हम हर फील्ड की, चाहे बोस्नियन देख लो, चाहे ईरानियन देख लो, चाहे अलग देश से, कि हम देखा जाए तो हम सब तो अपने अपने पेरेंट्स को, कहीं अपने कल्चर को छोड़कर हम मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में आके बसे। तो
آسٹریلین ملٹی کلچرل وومنز الائنس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مالنی راج اس رپورٹ کی کچھ مکھیہ باتیں ہم سے ساجھا کرتی ہیں.
Sure. So the report shows that more than 340,000 migrant and refugee women in Australia are working well below their skill level. This is not because they lack capability, but because the system designed to recognize their qualifications is broken. It's costly, it's confusing, and it's built around assumptions that don't reflect their lives. And so of those 340,000 migrants, 20% of them are more likely to be underutilized than migrant men and earn 31% less than an Australian-born woman with the same qualifications. I think, so we heard from about 64 women across Australia, many in their prime working years, across qualifications in health, engineering, psychology and education. And many of them had, like, you know, tertiary and postgraduate qualifications and years of professional experience. So these are women who are highly skilled, highly motivated and ready to contribute, but they are just not being recognised here. And one thing really, what really highlighted was the human impact of the... I guess the skills recognition issue, in terms of women telling us that their qualifications had become worthless, their careers on hold, their professional identities erased, and that led to anxiety, loss of confidence, and the feeling that their skills were rusting. And in some cases, they were increasingly susceptible to being vulnerable and to financial and domestic abuse. So the impacts are far-reaching, but also it's the fact that we have a skills shortage in this country. There are hospitals that have longer waiting lists. There are schools that don't have enough teachers. And we have this ready-made workforce here who are invited to the country based on their skills, and we're not able to utilize them. So right. I think that, yeah, there's a huge productivity gain hidden in plain sight here.
कई नियोक्ता मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में काम का अनुभव जरूरी है, भले ही उम्मीदवार के पास विदेश में लंबा और मजबूत अनुभव हो. जब तक वे लोकल एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर लेती, तब तक उन्हें अपने पेशे में वापस आने का मौका नहीं मिलता. तो क्या लोकल एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी चुनौती है, या फिर ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो मिलकर उनकी स्किल आधारित नौकरियों तक पहुँच को सीमित करता है? मालिनी राज बताती हैं.
Yes, I think that we saw that, you know, there is a element of, structural, and there's an intersection of structural and racism and sexism here in a system that demotivates, devalues and delays. So qualifications, experience, accents, names, countries of origin are really, we saw that they're read through a lens of lower credibility. And so... there is that discounting of expertise gained elsewhere. So in addition to, advocating for the government, we need to advocate to employers to see that this experience is a benefit to them. They were invited into the country based on their skills, and to kind of, you know, utilize them, because the diversity perspectives that they bring, it is a productivity gain.
तो क्या अगर इस समूह को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार सही नौकरियों में लाया जाए, तो क्या ये ऑस्ट्रेलियाई इकोनॉमी के लिए स्पष्ट रूप से एक बड़ा लाभ हो सकता है? मालिनी राज बताती हैं.
Well, SSI has done an Activate Australia Skills Report, which is the broader study that was done, which this builds on. Mm-hmm. And their study showed that if all the migrants were working at their skill level, it would add $9 billion to the economy.
तो इस रिपोर्ट में इन महिलाओं की स्किल्स का सही उपयोग करने के लिए कई सुझाव कई स्तरों पर दिए गए हैं.
I think that this is not a future workforce pipeline. They are a workforce already here. So they are trained, they are experienced, they are ready. So we are calling for the government in the next budget to a number of recommendations, but one is a national oversight body, a national commissioner, because a lot of the struggles is the complex processes that are really hard to navigate and they're not intuitive. So having that oversight body would help a lot of that navigation. And then specific guidance for, you know, support for migrants to migrant women specifically to navigate these pathways and take into account the realities of care, migration and work, and making sure that the systems reflect how women really live, not how we assume they should. So there's a number of reforms that are in the report. They're costed and proven in comparable countries like Canada and Germany. And so our recommendations for a faster, fairer and more affordable system with that gender responsive approach is what is needed.
तो आखिर समाधान क्या है? समाधान सिर्फ नौकरियां देने का नहीं, बल्कि सिस्टम को इस प्रकार बनाने का है कि स्किल्स को सही पहचानने और उपयोग करने की बाधाएं कम हो सकें।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और इस रिपोर्ट के बाद एक मैसेज पढ़ लेते हैं। धृत जी मैसेज करते हैं और उन्होंने गाने की रिक्वेस्ट करी है मेरे सामने वाली खिड़की में, और ये रिक्वेस्ट हमने नोट कर लिया है। मुझे देखना होगा क्या वो आज मैं आपके लिए प्ले कर सकता हूँ, नहीं तो हमारी टीम आपके लिए ज़रूर वो प्ले करेगी, आज नहीं तो कल के किसी शो में। और उनका एक और मैसेज आया कि हाउ टू सरप्राइज मॉम्स ऑन मदर्स डे। वेल, इसके बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं और जिन सवालों कि हम तलाश में हैं वो है न्यूट्रिशन से जुड़े। ये मैसेज आया है उस रिस्पांस में जहां मैंने आपको बताया था कि 8 मई को हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं, टॉक बैक लाइव शो SBS हिंदी पर, एक डाइटिशियन पूर्वा गुलियानी के साथ जो हमारे साथ स्टूडियो में होंगी, और उनसे हम सवाल पूछेंगे माओ के से रिलेटेड और उनकी रिकवरी से, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड। और अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो 0439 7 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि आप कॉल करें ख़ास तौर से 8 मई के इस शो में, और आपके सवालों का लाइव जवाब देने की हमारी कोशिश होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक गाना प्ले करते हैं, और गाना प्ले करने के बाद एक एड ब्रेक, और फिर मैं वापस आऊँगा एक आखिरी रिपोर्ट के लिए। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, सुनते रहिए SBS हिंदी। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, मेरा नाम है नबील, और अब शो की एक आखिरी रिपोर्ट। सिडनी में चाय बार की एक ऐसी पहल चर्चा में है जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक नया तरीका बनती जा रही है। इस चाय बार की शुरुआत एक पूर्व सैनिक ने की है। मसालों से बनी खास चाय और अलग अलग जगहों से आए लोगों की कहानियों के साथ ये जगह खास बन जाती है। आइए सुनते हैं इसी के बारे में थोड़ा और। एक पूर्व सैनिक द्वारा शुरू की गई खास टी बार्स यानी चाय की दुकानों की चेन काफी तेजी से बढ़ रही है। अम्बीज चाय में खास मसालों से बनी चाय मिलती है, और इसके संस्थापक को गर्व है कि उनके कैफे लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन।
Hey Bill.
Andy, how are you?
Very well. What are we doing today?
My favorite, the Amritsar place.
Absolutely.
ये चाय बार अम्बी का है जिन्हें अमरजीत सिंह थिन के नाम से भी जाना जाता है, और वो ब्रिटिश सेना में रहे हैं।
I do give a free chai to veterans and serving members of the armed forces because I too am a veteran and it's my way of giving back.
अमरजीत सिंह थिन की कहानी कई देशों तक फैली हुई है। वो पूर्वी अफ्रीका के कीनिया में पंजाबी माता पिता के घर जन्मे थे, और उनका कहना है कि सरकारी दबाव के कारण उनके परिवार को वहाँ से जाना पड़ा।
We had to leave because we were British passport holders. The plane actually was on the runway, and I remember my dad and I, the two of us were running to board the flight, the last plane out of Nairobi.
वो लंदन में बड़े हुए और बाद में सेना में भर्ती हो गए।
So in 1979, finished my basic training. We then got deployed into Germany, into one of the RAF bases where we maintained the communication centers. And this was during the Cold War as part of the British Army off the Rhine.
1989 में ऑस्ट्रेलिया आने के बाद अमरजीत सिंह थिन ने आईटी प्रशिक्षण का व्यवसाय शुरू किया, और एक महिलाओं की हॉकी टीम को कोचिंग दे रहे थे जब चाय पीने के उनके शौक ने उन्हें दूसरों के लिए चाय बनाने की ओर प्रेरित किया।
After the training session, sitting there and admiring the flavors and the spice, the smells of the chai, and they wondered what it was. I said, it's chai.
गरम दूध में खास मसालों को मिलाकर बनाई जाने वाली ये मसालेदार चाय कई दक्षिण एशियाई समुदायों के लिए खास महत्व रखती है। अमरजीत सिंह थिन का कहना है कि कॉफी के विकल्प के तौर पर चाय की लोकप्रियता यहाँ भी तेजी से बढ़ रही है।
स्ट्रॉन्ग फ्यूजन विद अफ्रीकन स्टाइल स्पाइसेस, पंजाबी स्टाइल कुकिंग And that's what makes this unique. No one does what we do.
This is a masala chai, and you feel it down the back of your throat. It's not a gentle drink. It's more hand-to-hand combat.
उनका कहना है कि उनकी चाय उनकी विविध जीवन यात्रा से गहराई से जुड़ी हुई है। कठिन आर्थिक समय के बावजूद अमरजीत सिंह थिन ने अपनी चाय को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया है। पिछले 7 वर्षों में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स और एसीटी यानी कैनबरा में 4 चाय बार्स खोले हैं और 5वे की भी शुरुआत होने वाली है।
The secret to my success really is the authenticity of my chais, the brewing of my chais. There was really no authentic brewing of chai. Chai was always powdered, some sort of syrup thrown with a bit of cinnamon in there. Our chais are handcrafted, mix all the spices, brew it with water, add milk, and then serve it that way. So it's very, very authentic, just how mum would have done it. Well, we will continue to grow. Canberra is going to be the next second spot we're opening up in Canberra. We want to be in Melbourne this year, and then I need to be in the UK next year. That's the plan.
Unki chai mein bahar se mangaye gaye masalon se bane ek darjan se adhik anokhe swaad shamil hai.
Spices typically come from all sorts of parts of the world. You've got India, Sri Lanka, Afghanistan. You've even got stuff coming in from Guatemala. The most popular chai right now is the Amritsar. It comes from the streets of Punjab, strong in ginger and cardamom. The sweet tooth, we've got Maddy's Mzungu chai, which is flavored with chocolate and pepper.
Aur phir hai unki sabse khas Ambis chai.
And that's where it all started. It's strong in pepper, strong in ginger, and very sweet.
ग्राहक ऐश पैरो का कहना है कि ये चाय बार सिर्फ चाय पीने की जगह से कहीं ज्यादा है
Feel of a bar, but it's chai, it's not alcohol, and so it's a nice place to come and spend time and connect with other people.
लगातार युद्ध की खबरों के बीच अमरजीत सिंह थिन को उम्मीद है कि उनके चाय बार एक अशांत दुनिया में थोड़ी शांति दे सकेंगे
I'm very proud of bringing people closer. Over a chai, we sit down, we chat, we meet, we talk, and get to know each other. I'm very proud of that.
ये रिपोर्ट SBS स्मॉल बिजनेस सीक्रेट्स के लिए सैंड्रा फुलोन और SBS न्यूज के लिए एलन ली द्वारा तैयार की गई है SBS हिंदी पर इसे आपके लिए प्रस्तुत किया नबील हसन ने आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मेरा नाम है नबील और शो के कुछ मिनट रह गए जिसमें हम आपके लिए कुछ गाने प्ले करते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और अगला गाना जो बहुत पुराना है बहुत प्यारा है और आपको ज़रूर पसंद आएगा जादू है तेरा ही जादू है आइए प्ले करते हैं बने रहिए SBS हिंदी के साथ SBS हिंदी पर मैं अब आपसे अलविदा लूंगा लेकिन अलविदा लेने से पहले दो छोटे से मैसेजेस पढ़ देता हूँ पराग जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सेगमेंट ऑन अम्बीज चाय जो हमने आखिरी वाला चाय बार की बात की थी और हेमलता पुरोहित जी लिखती हैं कि वेरी नाइस प्रोग्राम एंड शी इज़ हैप्पी कि इस फ्राइडे को हम लोग एक स्पेशल शो कर रहे हैं मदर्स डे के अवसर पर जिसमें SBS स्टूडियो में डाइटिशियन होंगी पूर्व ग्लानी और आपके हम सवाल लाइव लेंगे फ़ोन कॉल पर तो ज़रूर ट्यून इन करिएगा और 04397997667 हमारा नंबर है उस पर आप ज़रूर कॉल करिएगा चलिए अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और मैं आपसे मिलूंगा एक बार फिर बहुत जल्दी एक नए शो में और तब तक सुनते रहिए SBS हिंदी
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं